जो 26 नंबर मंदिर के पास आकर के प्रणाम करता था, कुछ पुजारियों ने वहां पर ऐसे चढ़ते हुए दूर से देखा है कि वो प्रणाम करता था शेर। और फिर 44 नंबर मंदिर में जो तीन भगवान है, त्रिमूर्ति बोलते हैं उसको, रत्नत्रय, वहां पर तो एक बार एक वानर ने, बंदर ने, काले मुंह वाले बंदर ने ऐसे दो भगवान के चरणों पर तो अपने डाबे और जमणे, दाहिने बाएं हाथ को रखा और बीच वाले भगवान के चरणों में सिर रखा और वहीं उसका प्राणांत हो गया। ऐसे भी प्राणी हुए हैं। अभी तो मनुष्य पर्याय में पता नहीं किस बात का अपन अभिमान कर रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है भविष्य का, और लेकिन न जाने क्यों जरा जरा सी बातों पर अपन अभिमान करने लग जाते हैं। उस क्षण का विचार करो जब अंतिम सांस निकलेगी, तब जीवन भर अपन ने जो भी कुछ किया है उसका रिजल्ट वहां पर मिलने वाला है। इसलिए अभी थोड़ा नम्र बनकर के चलना बेहतर होगा। कुछ भी नहीं, अभी किसी का कोई ठिकाना नहीं है। अभी अगर विनम्रता से चलो, हो सकता है अंत समय सुधर जाए। बिल्कुल किसी का भी कोई भरोसा नहीं। जीवन भर अच्छे अच्छे काम करने वाला भी कदाचित आयु बंध के काल में विचलित हो सकता है। बहुत अच्छे से सारे अच्छे अच्छे काम किए उसने जीवन में, कभी किसी को गाली भी नहीं दी, लेकिन टेलीविजन देखते समय ऐसा कोई सीन आ गया और उसमें उसने आयु बंध कर लिया, और आयु बंध करते समय उसका मन वहां लगा हुआ था, माने उसके अंदर उस श्रेणी का राग जागृत हो गया था। अब बताइए क्या होगा। उसने पूरी जिंदगी में लगभग 7 करोड़ का दान दिया होगा, लेकिन आयु बंद के समय उसने किसी गलत सीन को देख करके वैसा अशुभ राग कर लिया, क्या होगा परिणाम उसका? क्योंकि आयु बंद एक ऐसा टिकट है कि फिर वो बदला नहीं जाता। यहां तो क्या होता है कि टिकट ले लिया आपने, फिर रिजर्वेशन कराया तो फाइन दे करके फिर कुछ रकम आपको वापस भी मिल जाती है, लेकिन आयुबंध में ऐसा नहीं। आयुबंध में स्थिति कम हो सकती है, भविष्य के त्रिभाग में उतना उसमें भी है अवकाश, लेकिन आयु बदल नहीं सकती। दुर्गता वायुषो बंधे सम्यक्तम यस्य जायते गतिच्छेदो न तस्यास्ति तथा प्यल्पतरा स्थिति। संभवतः सार समुच्चय ग्रंथ का श्लोक हो कि सम्यक्त तो जिस जीव को आयु बांधने के बाद होता है वो उस गति से बच नहीं सकता, भले सम्यक दृष्टि बन जाए लेकिन उसको उस गति में नियम से जाना पड़ता है, पर स्थिति घटा सकता है वो। 33 सागर की आयु बांधी थी श्रेणिक राजा ने, अब 84,000 की स्थिति हो गई, माने कहां 33 सागर कहां 84,000 वर्ष, बहुत फर्क पड़ गया। स्थिति कम कर सकता है लेकिन गति नहीं बदल सकता। इसलिए क्षण क्षण में सतर्क रहने की बात है, कभी भी अभिमान नहीं करना, कम से कम धर्म क्षेत्र में। धर्म क्षेत्र में मंदिर में प्रवेश करते समय एकदम छोटा बन करके आना, आपकी चाल बदल जानी चाहिए मंदिर के अंदर, पर वो बनावटी नहीं होनी चाहिए। बनावटी होगी तो वो भी एक दूसरी कषाय है, इधर आप मान कषाय छोड़ने का ढोंग कर रहे हैं और ढोंग का मतलब माना माया कषाय हो गई, कहां बचे आप कषाय से। तो वैसा नहीं करना अपने को, एकदम विनम्र होकर कि भगवान मैं आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, मैं जो भी समझता हूं अपने समाज में मेरी जो भी स्थिति हो, लोगों में मेरा जितना भी नाम विस्तृत हो, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मैं आपकी चरण धूल के बराबर भी नहीं हूं। इतनी विनम्रता से और मंदिर में प्रवेश करते समय द्वार पर वहां की जो धरती है वहां की रज को मस्तक पर लगा लेना। द्वार में प्रवेश करते समय जो देहरी है वहां की रज को मस्तक पर लगा लेना। नव देवता में ये चैत्यालय है, उसको प्रणाम हो जाएगा कि भगवान आपके आलय की धूल भी मेरे मस्तक पर धारण करने योग्य है। कभी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई देहरी को प्रणाम करना तो मिथ्यात्व है, क्योंकि मिथ्यात्व की वर्तमान युग में 50 परिभाषाएं और बन चुकी हैं जो शास्त्रों में कहीं नहीं मिलती। वास्तव में वो देहरी को नमस्कार नहीं कर रहा है। हाँ, देखा सीखी अगर कोई करने लग जाए, वो सोचे कि भाई ये दरवाजा भी पहले नमस्कार करने योग्य होता है, फिर बाद में अंदर जाकर गर्भगृह में भगवान को प्रणाम किया जाता है। उसको समझाना चाहिए कि दरवाजे को नमस्कार नहीं किया जा रहा है, ये भगवान का जो भवन है, ये आलय है, उस आलय को नमस्कार है, चैत्यालय को नमस्कार है, जिनालय को नमस्कार है, नौ देवताओं में से एक देवता को नमस्कार है। तो वो रज मस्तक पर लगाना मिथ्यात्व कैसे हो सकता है, और न लगाना सम्यक तो कैसे हो सकता है? दोनों तरफ से सोचो, विधि और निषेध, कि जो भगवान के आलय की विनय नहीं करना जानता, कुछ कमी तो मानी जाएगी ना उसके अंदर। तो फिर दोनों बातों पर विचार करना, इतनी विनम्रता के साथ अंदर आना, अंदर किसी से चर्चा करना तो दूर की बात, काय की चर्चा, ये तो अर्चा का स्थान है, चर्चा में कहां फंस गए? भगवान का मंदिर लौकिक चर्चा के लिए नहीं है। लौकिक चर्चा के लिए दूसरे बहुत सारे स्थान हैं। आप किराए पर भी ले सकते हैं कोई स्थान, अगर कोई ऐसी चर्चा आपको करनी हो तो। लेकिन जिनेंद्र भगवान के चरण सानिध्य में भगवान की अर्चा होनी चाहिए। अर्चा यानी अर्चना। अर्चना की क्या परिभाषा है? चरु बलि पुप्फ दीव धुवे ही सग बलि सग भत्ति पगासो अर्चना नाम। धवला की आठवीं पुस्तक में अर्चना की परिभाषा दी है, चरु बलि पुष्प दीप धूप आदि के द्वारा अपनी भक्ति को प्रभु चरणों में प्रकट करना अर्चना है। और पूजा में भेद किया, पूजा की परिभाषा अलग है, अर्चना की परिभाषा अलग है। पूजा में जो बड़े बड़े विधान अनुष्ठान किए जाते हैं उसको ग्रहण किया, ऐन्द्रध्वज कल्पद्रुमादि महापूजनानुष्ठाना पूजनम, पूजा, उसको पूजा लिया। और फिर द्रव्य चढ़ाने के साथ अपनी भक्ति को जो प्रकट किया जाता है उसको अर्चना कहा। इसलिए आचार्य कुंदकुन स्वामी भी उन सब बातों को लेकर के अंचलिका कहते हैं, अच्छेमी पूजेमी। अगर अर्चना का अर्थ पूजा होता तो फिर अच्छेमी और उसके बाद पूजेमी, ये शब्द सुने होंगे आपने, दो बातें कैसे करते, अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी, वंदन और नमस्कार दोनों में अंतर है। वंदन यानी वो कृतिकर्म की विधि के साथ गुणानुवाद पूर्वक भगवान को प्रणाम करना, नमस्कार मतलब झुकना मात्र, कोई उसमें मुख से कुछ उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं, झुक गए वो नमस्कार हो गया। और फिर मुख से उच्च वंदे तद्गुण लब्धे, और फिर तद्गुण लब्धे के गुण कौन से गुण, मोक्ष मार्ग से नेतार, मोक्ष मार्ग का नेतृत्व, भेत्तारम कर्म भूरताम कर्म रूपी पर्वतों का भेतृत्व, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम समस्त तत्वों का ज्ञातृत्व। इन सब बातों को लेकर के जब करते हैं नमस्कार तो उसको वंदन कहते। तो एक शब्दों के भी बड़े रहस्य होते हैं। तो विनम्र बन करके अगर अपन आते हैं भगवान की शरण में अर्चा करने के लिए तो फिर वहां पर विवाद का तो सवाल ही नहीं। जो छोटा होता है वो झगड़ता है क्या कभी? देखो डांटता कौन है, नियम है, साइकोलॉजी का नियम है कि जिसको आप छोटा समझते हैं उसी को डांट सकते हैं, बिल्कुल ये अकाट्य नियम है। और आप देख लो, थोड़ा चिंतन करके विचार करके देखो कि डांटते किसको है अपन, या तो किसी को अपन अज्ञानी समझते हैं तब डांटते हैं, या फिर किसी को शरारती समझते हैं, या फिर अनुशासन से रहित समझते हैं, या किसी भी निमित्त से कहीं ना कहीं उसमें कोई ऐसी बात देखते हैं तब जाकर के डांटते हैं, और क्रोध आता है तब डांटते हैं। अब क्रोध बड़ों को डांट सकते हैं क्या? क्या कोई शिष्य आचार्य श्री को डांट सकते हैं? कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। आचार्य श्री शिष्य को डांट सकते जागृति में भी, लेकिन शिष्य स्वप्न में भी कभी गुरु को नहीं डांट सकते, बड़े हैं ना। इसी प्रकार मंदिर में अपन छोटे बनकर के आते हैं तो फिर भक्ति जागृत होती है, अगर अपन मंदिर में भी बड़े बनकर के आते हैं तो फिर भक्ति का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बड़ा कभी भक्ति नहीं कर सकता, छोटा ही भक्ति करता है। तो छोटे बन जाए तो कल्याण हो जाए, अपन बड़े बन जाते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत सीख लेते हैं तो एकदम ऐसे 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 बैलून फूलना चालू कर देता, फुग्गा फूल जाता है और फूट भी जाता है अंत में, ज्यादा फूल जाता है तो फूट जाता है। तो नम्रता बहुत सहायक है, वही वाला है, इसी से तो बना है वो जो 12 भावना लिखी मंगत राय जी ने, उसमें अक्षरण अनुप्रेक्षा में उन्होंने यही बात लिखी है जो यहां पर आई ना, कि शेर के पंजे में अगर हिरण आ जाए तो उसको कोई बचा नहीं सकता, उसी प्रकार मौत आने पर जीव को कोई बचा नहीं सकता। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में। मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बश नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। कोई किसी का बस नहीं चलता, अंत में मरना ही पड़ता है। तो जितनी ये सांसें हैं, इस सांसों का खजाना मिला है अपने को। सवेरे ध्यान में हमने बोला है कि ये श्वास जो अपने को मिली है ये भंडार है, खजाना है, और कितनी बची अभी पता नहीं, क्योंकि वो डार्क चैम्बर है। डार्क चैम्बर यानी वो अंधियारा कक्ष है, अपन जानते नहीं कि अब अंदर से और कितना निकलेंगे ये सांस रूपी स्वर्ण सिक्के, क्या मालूम कब अंतिम सांस आ जाए। तो सांस सांस पर जाप के 5 भेद हैं, और उसमें जो 5वां भेद अगर किसी को सिद्ध हो जाए तो फिर उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक पहला वाचनिक जाप है। वाचनिक जाप में क्या है कि हफ्ते 15 दिन के लिए आपको धीरे धीरे उच्चारण पूर्वक नमोकार मंत्र की माला फेरनी पड़ती है, नमो अरिहंताण, धीरे धीरे, बहुत धीमे। जप का अर्थ ही है धीमे, जोरदार आवाज नहीं होनी चाहिए, जोरदार आवाज होगी तो फिर वो पाठ कहलाएगा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहूणम, ये नमोकार पाठ हो गया। और जो लय है वो आर्या पाठ कहलाती है, ये आर्या पाठ विधि होगी जो अभी अपन ने पढ़ी ना। फिर जाप किसको कहते हैं, धीमे से वचनों से उच्चारित करने को वाचनिक जाप कहते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहूणम, ये जाप। तो हफ्ते भर के लिए ये जाप कर लो, या 15 दिन के लिए, एक महीने के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं है। इसके बाद जो दूसरी जाप है वो प्रारंभ करो। अभी बुध हस्त नक्षत्र आने वाला बुधवार को, जिसको जाप प्रारंभ करने की इच्छा हो, जैसे 1,25,000 नमोकार मंत्र की जाप करना हो तो देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में श्रीफल अर्पित करके, कायोत्सर्ग करके, वो नियम लेकर आप जाप प्रारंभ कर सकते हैं। बुधवार का समय अच्छा है। तो फिर दूसरी जो जाप है उसका तरीका क्या है, वो है उपांशु। उपांशु में गले की आवाज नहीं आनी चाहिए, होठ जिह्वा आदि का पूरा यथावत परिस्पंद होगा, जैसे उच्चारण हम करके बता रहे हैं। उपांशु जाप आचार्य श्री ने हम लोगों को सिखाई थी 1984 में, 84 में, दिसंबर का महीना था, पनागर में जब बैठते थे सामायिक में, वो अंदर बहुत शांत स्थान है जो अतिशय क्षेत्र है ना पनागर में, वहां पर अंदर बैठते थे आचार्य श्री, सबसे अंदर वाले कमरे में बैठते थे। तो उनने ये जाप सिखाई थी, बोले कि जिनको प्रमाद आता है सामायिक में उनको ये जाप करनी चाहिए। प्रमाद का मतलब दोपहर के सामायिक में क्या, खाने खाने के बाद में जब बैठते हैं सामायिक करने तो फिर थोड़ी देर तक, 1, 9, 10, 15 तक के तो अच्छा चलता है वो, लेकिन उसके बाद फिर गिनती बिगड़ जाती है, एकदम ऐसे आँखों में भारीपन आ जाता है, शरीर में एकदम ढीलापन आ जाता है, और अंदर सुस्ती और निद्रा धावा बोल देते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे जब फिर ऐसे ध्यान रखता है कि अरे नहीं सामायिक चल रही, तो झटके से आँख खुलती है, फिर थोड़ी देर तक फेरते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो, फिर आंखों में भारीपन, और वो एक अलग सा संघर्ष चलता है वहाँ। तो आचार्य जी ने कहा था कि जिनको उसमें ज़्यादा प्रमाद आता हो वो उपांशु जाप करें। उपांशु जाप में क्या है, गले से आवाज़ नहीं निकालते लेकिन उच्चारण होता है बराबर, देखिए कैसे, गले से नहीं है, लेकिन जैसे जब कान में किसी के कोई बात फुसफुसाते हैं, विस्पर करते हैं, तब जो अपन आवाज जिस भाषा में बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, बस वैसे ही अगर नमोकार की जाप देते तो उपांशु जाप है। लेकिन इसमें अनावश्यक ध्वनि नहीं होनी चाहिए। अनावश्यक आवाज आती है तो वो अतिचार है। उपांशु के अतिचार कौन से हैं? जैसे आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं और सीटियों की आवाज आ रही है, ये उसके अतिचार, तो ये आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज सिर्फ नमोकार की आनी चाहिए। और जीभ के भी टकराने की आवाज आती है बीच में, उसको भी आप शांत एकांत स्थान में जाकर के अभ्यास करके सुधारो। वो जीभ की भी आवाज नहीं आनी चाहिए टकराने की। शुद्ध उपांशु होनी चाहिए। और ये सबको परिचित है, ये सब लोग जानते हैं इस चीज को। चौके में जब पीछे से कोई चीज मंगाते हैं, अनार दाल, कोई चीज बुलवाते, तो ये इसी भाषा में बोलना पड़ता है भाई। ये भाषा कोई नई भाषा नहीं है, ये उपांशु जाप। और बाकी जो तीन जाप है उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। स्वामी कार्तिकेय कुमार मुनि द्वारा रचित है और इसमें 12 अनुप्रेक्षाओं का व्याख्यान है। बड़ी सुंदर गाथाएं हैं। अभी अशरण अनुप्रेक्षा चल रही है। अनित्यानुप्रेक्षा में नश्वरता का चित्रण था, अशरण में कोई किसी को बचाने वाला नहीं है, इस बात का चित्रण है। और इन अनुप्रेक्षाओं से अभी एक चिकित्सा पद्धति भी डेवलप हो रही है कि जिसमें विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगियों को एक शांत कक्ष में हेडफोन्स द्वारा अनुप्रेक्षाएं सुनाई जाती हैं। और किसी को अनित्यानुप्रेक्षा के श्रवण से राहत मिल जाती है, किसी को अशरण अनुप्रेक्षा से, किसी को और कोई अनुप्रेक्षा को सुनाने से सुकून मिल जाता है। मानसिक रूप से जो परेशान रहते हैं तो उनको अनुप्रेक्षाओं के श्रवण से बड़ी राहत मिलती है। तो ये अनुप्रेक्षा थेरापी अभी डेवलप हो रही है, इसकी चर्चा हुई थी एक सिविल सर्जन से, उनने बतलाया था। तो जब अपन किसी चीज़ की आशा नहीं रखते और वो चीज़ घट जाए, वैसी घटना घट जाए, तो एकदम मन टूट जाता है या हृदय घबरा जाता है, दिल घबरा जाता है, तो उस समय अनुप्रेक्षा के चिंतन से बड़ा बल मिलता है। और उसी में ये अशरण अनुप्रेक्षा है कि उस संसार में कौन रक्षक है जहाँ इंद्र की भी आयु पूर्ण हो जाती है और उसको भी देव पर्याय छोड़नी पड़ जाती है। कौन चाहेगा इंद्र का ठाट छूट जाए, लेकिन आयु पूर्ण होती ही सब छूटता है। फिर हरिहर बंबा दिया, हरि हो, हर हो, रुद्र, ब्रह्मादि हो, आदि शब्द में और भी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। गामा पहलवान भी उसमें शामिल है। एक अमरावती शहर का जो इतिहास है, उसमें यहाँ जब छप्पनिया अकाल पड़ा था, आपने सुना हो कभी, उस समय के फोटोग्राफ्स हैं, मतलब 100-150 साल पुराने फोटोज दिए हुए हैं। अकाल में क्या दुर्दशा हुई थी मनुष्य की, जानवर भूखे मर गए थे और हर साल आषाढ़ में वो बेचारे खेडूत किसान लोग, बैल थे नहीं तो फिर खुद हल चलाते थे। वो चित्र उसमें दिया हुआ है कि खुद आदमी हल चला रहे हैं। और उसी किताब में एक विश्व विजेता पहलवान गामा का चित्र दिया है। बिल्कुल आप उसके फोटोग्राफ को देखोगे तो आपको महाभारत के भीम का स्मरण आ जाए। माने विशाल सीना है और कमर एकदम पतली। उत्तर पुराण में कृष्ण का जो वर्णन है पहलवानी के अखाड़े में, कृष्ण भी बहुत अच्छी पहलवानी करते थे, तो उसका जो चित्रण बिल्कुल वैसा ही स्मरण हुआ था। तो इतना जबरदस्त पहलवान कि जिसके आगे आधे मिनट से ज्यादा कोई टिका नहीं है। उस पहलवान का भी अंत कितना दर्दनाक हो गया। यानी कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कितना भी बलिवान बलवान हो, तू हरि हर ब्रह्मा आदि आदि शब्द से चक्रवर्ती है और अन्य भी जितने बड़े बड़े राजा महाराजा आदि सब काल कवलित हो जाते हैं, यानी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कोई इस धरती पर अमर नहीं होता। फिर दृष्टांत दिया कि शेर के चंगुल में अगर कोई हिरण आ जाता है, माने अगर कोई मृगराज मृग को पकड़ ले, सिंह हिरण को पकड़ ले, तो जिस प्रकार उस हिरण को बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं होता, उसी प्रकार जब मृत्यु मनुष्य को पकड़ती है तब मरने से बचाने की कोई शक्ति इस धरती पर नहीं मिलती। आगे की गाथा है 25वीं गाथा। जय देवो वीवरखदि मंतो तंतो ये खेत पालो ये मियमाणं पि मनुसं तो मनुया अखया हुंती। जय जय माने यदि, मियमाणं पि मनुसं देवो मंतो तंतो खेत पालोय रख दी तो मनुया अखया हुंती। बोले मरते हुए मनुष्य की रक्षा यदि कोई मंत्र कर सकता, कोई देव कर सकता, देव से यहां पर कल्पवासी देव ले लो, या फिर देव से दिव्यति अनंत ज्ञानादि गुणई ही इति देव, उस व्युत्पत्ति के अनुसार साक्षात जिनेन्द्र देव भी यदि किसी मरते हुए प्राणी को बचा लेते तो आचार्य कहते हैं कि फिर ये धरती मनुष्यों से भर जाती, एक भी आदमी मरता नहीं, सब आदमी आदमी भर जाते, किसी का मरण होना ही नहीं क्योंकि बचाने वाले बैठे हुए हैं। तो जिनेन्द्र देव भी अगर किसी को बचा लेते, कोई मंत्र बचा लेता, या फिर कल्पवासी देव बचा लेते, कोई तंत्र, तंत्र का अर्थ होता है विधि। क्या होता है कि तंत्र में शारीरिक कुछ चेष्टाओं की मुद्राओं की अपेक्षा रहती है, मंत्र में मन की एकाग्रता अपेक्षित रहती है, और यंत्र में अक्षर और अंक रूप वचनों की प्रधानता होती है। तो ये तीन चीजें हैं, मंत्र यंत्र और तंत्र। मंत्र में मन की स्थिरता होना आवश्यक है, यंत्र में वचनों को व्यवस्थित रखना आवश्यक है। किसी भी यंत्र को आप देखिएगा, उसमें उल्टे सीधे नहीं लिखे रहेंगे वो अक्षर या अंक, अनाहत की आकृति बनी होगी जिस यंत्र में, तो एक व्यवस्थित विधि से बनी होगी। सिद्ध चक्र का जो यंत्र है उसमें भी एक व्यवस्थित क्रम से वो सारे बीजाक्षर लिखे हुए हैं। उसी प्रकार भक्तामर यंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, अनेक प्रकार के यंत्र होते हैं। जिनेन्द्र वर्णी जी यंत्र के महान ज्ञानकार थे और उन्होंने इसमें जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में यंत्रों का अच्छा संग्रह दिया है। अनेक प्रकार के यंत्र हैं। तो यंत्र क्या होता है कि जिनवाणी का एक प्रतीक है, उसमें कई प्रकार के बीजाक्षर होते हैं और कुछ अंक भी डले होते हैं, और इतनी विचित्रता है उसमें कि देखो ये शब्दों की शक्ति के बारे में हम आपको बताएं कि एक क्रम से उसी अंक को आप लिख दो तो उसका परिणाम बदल जाता है, और उसी अंक समूह को आप दूसरे क्रम से लिख दो तो फिर उसका कुछ और परिणाम होता है। अभी देरोल जी क्षेत्र है यहां पर पास में, वहां का जो एक यंत्र जागृत यंत्र है, रोग निवारण यंत्र, और उसकी यंत्र की भी एक प्रतिष्ठा विधि होती है, प्रतिष्ठित हो जाने के बाद यदि उस यंत्र के अभिषेक का वह अमृत वह जल किसी रुग्ण मनुष्य को या पीड़ित मनुष्य को दिया जाए तो उसका प्रभाव इतना आश्चर्यकारी होता है कि साइंटिस्ट्स लोग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्या हुआ इसमें। जैसे उदाहरण के लिए, वहाँ देरोल में एक बालक रहता था छोटा, और फिर जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि हृदय के कुछ वाल्व्स खराब हैं। उसको लगभग एक महीने तक उस रोग निवारक यंत्र द्वारा उपचार दिया गया, और जब दोबारा चेकअप कराया वो वाल्व पूरे ठीक हो चुके थे, जबकि वाल्व के कारण कई त्यागी व्रतियों का भी अवसान हो चुका है। हार्ट के वाल्व की खराबी से प्राण निकल जाते हैं कई लोगों के, लेकिन उस यंत्र में ऐसा निमित्त रूप परिणमन है। और फिर इसमें आप ये मत समझो कि ये कोई कारण कार्य व्यवस्था से पृथक वस्तु है। देखो, सारी चीज निमित्त उपादान से ही होगी जैन दर्शन के अनुसार, और उसमें विश्व का कोई पदार्थ छूटेगा नहीं, ये भी याद रखना। जिस प्रकार ब्रूफेन या और कोई ऐसी एनाल्जेसिक पेन किलर टैबलेट खाने पर शरीर का दर्द कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, अब वो ब्रूफेन क्या चीज है? उद्गल द्रव्य है, लेकिन उस ब्रूफेन के बदले आप टेरामाइसिन खा लो तो वो भी पुद्गल द्रव्य है, कोई दो मत नहीं इसमें, 100% पुद्गल द्रव्य है वो भी टेरामाइसिन। या और कोई एंटीबायोटिक खा लो, नहीं, वो क्या होता है कि परमाणुओं का जो एक क्रम होता है, जो किसी एक औषध में परमाणुओं की संरचना होती है, व्यवस्था होती है, उसका अलग नैमित्तिक परिणाम होता है। निमित्त वो है और नैमित्तिक परिणाम किसी पर द्रव्य में होना है, क्योंकि नैमित्तिक भाव अपने अंदर नहीं होता, अपने अंदर उपादान उपादेय भाव होता है, और निमित्त नैमित्तिक भाव निमित्त पर द्रव्य रहता है, और नैमित्तिक वो रहता है जिसमें कार्य हो रहा है। तो ऐसे जिस प्रकार औषध में ऐसे विभिन्न परिणाम होते हैं, उसी प्रकार और भी बहुत सारे ऐसे उपचार हैं, आगम में भी हैं, कि जिनसे अलग अलग प्रकार से रोग निवारण हुआ करते हैं। बहुत पुराने पुराने यंत्र भी प्राचीन मंदिरों में उपलब्ध होते हैं, और कई जगह तो शिलाओं में अंकित है। और फिर जो विशेष भक्ति रखते हैं इन पवित्र वस्तुओं के प्रति, जैसे इंदौर में एक सज्जन सेठ हैं, उन्होंने चांदी पर भक्तामर यंत्र बनवाया है। अब इसमें ये बात जरूर है कि कुछ मंत्र तंत्र जो मूल द्वादशांग श्रुत से निकले हुए नहीं हैं, वो भी इस पंचम काल में प्रचलन में आ गए। अब उसको पहचानना जरूरी है कि ऐसे कौन से मंत्र हैं। तो फिर जो प्रामाणिक आचार्य प्रणीत ग्रंथ हो और जिसमें ऐसा उल्लेख हो, उसको अपन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन बाकी बहुत सारे जैनेतर यंत्र भी हैं, और फिर एक यंत्र से बारिश गिरने लग जाती है, दूसरे यंत्र से बारिश रुक जाती है बरसात। तो यंत्र का जैन शासन में अभाव नहीं है, यंत्र नाम की भी कोई वस्तु है। वो यंत्र मतलब वचनात्मक होता है, अचल यंत्र क्या चीज है? जिस जिन प्रतिमा को उठा करके अभिषेक नहीं किया जाता, जो विराजमान हो गई तो फिर कायम के लिए विराजमान हो गई, उसके नीचे एक यंत्र रखा जाता है। अभी जब यहाँ पर प्रतिष्ठाएं हुई थी मऊ में और भीलोड़ा में, तब पंडित जी ने दिखाया था वो यंत्र, हसमुख जी ने, और फिर उस यंत्र को नीचे विराजमान किया था और उसके ऊपर प्रतिमा विराजमान कर दी थी, अचल प्रतिमा। तो कहीं ना कहीं विधान तो होगा यंत्रों का शास्त्रों में, तभी तो ये सब प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार एक नमोकार मंत्र संबंधी भी यंत्र बनाया जाता है, और भी अंकों के यंत्र बहुत सारे होते हैं, 15 की गिनती वाले यंत्र भी होते हैं, एक बीसा यंत्र भी होता है, और 65 या यंत्र भी होता है, अलग अलग अंकों वाले यंत्र होते हैं। तो वो सारे यंत्र जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो फिर प्रतिष्ठा विधि के द्वारा उनमें एक पवित्रता आती है और फिर उनको ऊंचा स्थान दिया जाता है। विनायक यंत्र होता है एक, सैकड़ों वर्षों से जैन मंदिरों में विनायक यंत्र आपको मिलेंगे, पुराने पुराने।